बहुत ग्रास रूट लेवल की बात आम लोगों को समझाने के लिए, अमली तौर पर सरकार अलैहिस्सलाम ने रवदारी के कई सबूत दिए और प्रैक्टिकली आपने करके बताया। यही तरीक सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने माशरे में राइज किया। ज़रा ये बताइए कैसे उन्होंने रवदारी को फ़रोग दिया, कैसे मुस्तहकम किया माशरे को। इवन यानी आप देखिए कि उससे पहले या उसके बाद कोई मिसाल नहीं मिलती, मिसाल सिर्फ सरकार अलैहिस्सलाम उनके गुलामों की मिलती है कि जंगों में भी रवदारी का आपने जो सबूत दिया, बताइए ज़रा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन इस अमर में कोई इख्तिलाफ नहीं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज में मुआशरे को मुस्तहकम फरमाया उसकी मिसाल सारी दुनिया में निराली है और मुनफरिद है। और उसके अगर मैं स्टैटिस्टिक्स आपसे कुछ शेयर करूं तो वो ये हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा जब कायम फरमाया तो ये 622 से 632 ईस्वी का ज़माना है।
ठीक है,
इन 10 सालों के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बवजूद असबाब जो कि वहाँ की कंडीशंस थी उसके लिए तकरीबन कोई 100 गज़वात और सराया हुए।
दुरुस्त।
उनका नतीजा ये निकला कि दुश्मन के 150 अफराद ही कत्ल हुए, मुकाबलतन मुसलमानों के तकरीबन 100 से ज़ायद मुसलमान शहीद हुए। अब इसका मुकाबला किसी भी मुआशरे तहजीब हत्ता के 20वीं सदी के पहले निस्फ के अंदर जो दो होने वाली आलमी जंग है उसमें भी 6 मिलियन अफराद का तहतेक कर दिया गया। इससे पता चलता है कि तहजीब अखलाकियात कहाँ पर है। फिर दूसरी बात, अगर आपने इस्तेहकाम को नापना है तो आप ये देखिए कि मदीना की रियासत जो कि निहायत एक मुख्तसर सिटी स्टेट एक लिहाज से थी, उसमें हर रोज़ कमोबेश कोई 274 मुरब्बा मील का इजाफा औसतन हो रहा था। और जब 10 साल मुकम्मल हुए इस इस्तेहकाम का आलम यह था कि 10 लाख मुरब्बा मील वसत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पैदा कर दी। अच्छा, ये कैसे हुआ? अगर आप इसकी रूट्स को देखेंगे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से चंद मुट्ठी भर मुहाजिरीन तशरीफ लाए, किसके लिए? एलाए कलिमातुल हक, यानी एक खैर का पैगाम लेकर। लेकिन दुश्मनों ने जो साजिशें बुनी और फिर जो नए मुआशरे के मामलात थे और फिर वहां पर भी जो होस्ट यानी मेजबान मुआशरा था जिनको हम अंसार के नाम से आज जानते हैं, उनके अलावा यहूद और मुशरिकीन के कबाइल भी मौजूद थे। इस पूरी मुआशरत के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आते ही बीज बोया अखवात यानी ब्रदरहुड का, यानी आपने सबसे पहला इदारा कायम फरमाया कि जितने भी मुहाजिरीन थे उनको फर्दन फर्दन भाई बना दिया अंसार का। यह है पहला स्टेप, यह है पहला स्टेप जिसके नतीजे में जो अंसार थे उनके अंदर इतनी मोहब्बत भर दी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि उन्होंने अपने घर के अंदर कारोबार के अंदर। अच्छा, इससे क्या हुआ? एक तो मुआशरे के अंदर इस्तेहकाम, इसके नतीजे के अंदर क्रिमिनल एलिमेंट्स खत्म हो गए, इसके अंदर क्राइम रेट के बिल्कुल इम्कान खत्म हो गए, और जो इकोनॉमिक मसला था कि मुसलमानों को रोजगार, जो नए मुसलमान हैं मुहाजिर को रोजगार कहां से मिलेगा, उस रोजगार का भी बखूबी एहतमाम हो गया। अब आप आ जाइए इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसको आपने कैसे कायम किया? आपने वहां के यहूद और नसारा और मुशरिकीन जो थे उन वो ट्राइबल सोसाइटी थी, सेंट्रलाइज नहीं थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर एक के पास गए जो ना मुसलमान थे,
ठीक है,
आपने उनके साथ एक पॉलिटिकल मुआहदा इस अंदाज में किया कि आप अपने दीन पे कायम रहिए लेकिन हमारे इस मुआशरे के अंदर इसके इस्तेहकाम के लिए सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन की जरूरत है। और नतीजा ये निकला कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो बार्गेनिंग और नेगोशिएशन की पावर थी, ये जो पॉलिटिकल विजन था वो पावर,
पॉलिटिकल विजडम जो आप
विजडम आप कहिए हिकमा कहिए, यानी इसके नतीजे में वो पावर और डिसीजन मेकिंग का फैसला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आ गया। तीसरी बात,
ये तो मिसाके मदीना जो है
और मिसाके
में उसी का मतलब रिफ्लेक्शन।
अब आप आइए बाहर, यानी मदीनतुल मुनव्वरा से जब आप बाहर आते हैं तो जैसे ही इंटरनल स्टेबिलिटी दाखिली इस्तेहकाम आया तो आप शुमाल की तरफ तशरीफ ले गए, वहां पर जो हेमा नामी एक कबीला है, उनके साथ जो मुआहदे की शिकें आज हमें दस्तयाब है, यानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट से यह पता चलता है कि उन्होंने बर्मला कहा कि हमारा आपके साथ कोई मजहबी मामला नहीं है, ये खालिसतन सियासी اور فوجی معاہدہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رواداری, اس کو ایک لحاظ سے آپ کہیے اوپننیس, اس کو آپ یہ کہیے کہ معاشرے کے اندر سٹیبلٹی لانے کے لیے جہاں ممکن ہو سکتے تھے آپ نے معاہدات
کرنے پڑے. نجران کی عیسائیوں سے جو آپ نے معاہدات
کیا دیکھیں نا وہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جنگوں کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ دشمن اگر مر بھی جائے گا تو بھی اس کو عزت
مسئلہ نہیں ہوگا,
اس کا مسئلہ نہیں ہوگا, اس کو عزت ملے گی. جبکہ ہمیں پتہ ہے غزوہ بدر کے اندر جب جن لوگوں کو یعنی کہ جو لوگ آپ کی جان کے در پہ تھے آپ نے ان کو بھی عزت اکرام ان کی موت کے بعد دیا, اس سے بڑھ
کر میں دفن کیا تاکہ لاشوں کی بے حرمتی نہ ہو,
جانور ان کا مسئلہ نہ کر. یہ ہے